14. टू मच पजेसिव। जैसे ही वंशिका आस्था के पास घूम कर आई और एक बार फिर उसने आस्था को गले से लगाकर डांस करते हुए उसके गालों पर किस किया और उसकी पतली कमर को भी छू लिया, तो अरमान के लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था। अरमान ने बढ़कर वंशिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगा। अरमान के वहां अचानक आ जाने पर सब लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वहीं अरमान के साथ साथ आकाश, सुमित, ध्रुव और अविनाश साथ दादाजी भी किसी अनहोनी के डर से अरमान को संभालने के लिए वहां पहुंच गए थे, क्योंकि वो सब अरमान के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशंस देख चुके थे। वे सब जानते थे अगर आज उन्होंने अरमान को नहीं रोका तो कहीं वो गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना करते। फिलहाल दादाजी को उन सब बच्चों को हंसते खेलते देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन सब लड़कियों को एक अनजान आदमी के साथ इस तरह से मौज मस्ती करते हुए देखकर उनका भी खून खौल उठा था। कहीं ना कहीं दादाजी को भी उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहे थे कि इस बार वाकई में इन बच्चियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। भला इस तरह से किसी अजनबी लड़के को कमरे में लाकर उसके साथ इस तरह से डांस कैसे कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लड़के जलन और गुस्से से भर गए थे। उनकी आंखें गुस्से से सुलग गईं और सभी नाखुश होते हुए अपनी अपनी बीवियों को नाराजगी से देख रहे थे। वहीं जैसे ही नानी माँ ने ये देखा कि सारे लड़कों की गैंग उनके कमरे में आ गई है, नानी माँ जो कि मेकअप में पूरी तरह सजी धजी बैठी हुई थीं, तो अब अचानक उन्हें बेहद शर्म सी महसूस होने लगी और कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए देर ना करते हुए उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्लू खींचा और अपना मेकअप रगड़ना शुरू कर दिया। अब नानी माँ जल्दी जल्दी में मेकअप पहुँच रही थी ताकि किसी लड़के की नज़र उन ना पड़े, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म सी महसूस हो रही थी। लेकिन मेकअप पहुँचने के चक्कर में उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। उनकी लिपस्टिक चेहरे पर फैल गई, कहीं से पाउडर छूटा तो कहीं ज्यादा लग गया और कहीं कहीं काजल भी एक आंख से हटकर दूसरी पर फैल गया। इस तरह से नानी माँ का लुक डेंजरस और भद्दा सा हो गया था। वहीं आहान ने आकर तुरंत वंशिका को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि वंशिका ने थोड़ी देर पहले अपने होठों से रौनक को छुआ था। वहीं आकाश और सुमित का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था, वो उसे जानलेवा नजरन से घूर रहे थे। अविनाश जो कि आस्था का भाई था, वो तो आग उगलती नजरों से एंजल को एकटक देख रहा था। उसने एंजल का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से एक अजनबी लड़के के साथ डांस करने की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसी बेहुदा हरकत कैसे कर सकती हो एंजल? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। एंजल को इस वक्त अविनाश पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में कई तरह के इमोशंस छुपे हुए थे। सब लड़कियों का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वंशिका अब अगले ही पल घबरासी गई थी और डर के मारे थरथरा भी रही थी, क्योंकि सभी लड़के उसे जानलेवा नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वंशिका को उन लड़कों के साथ अकेले छोड़ दिया जाए तो सभी उसकी बोटी बोटी नोच लेंगे। लेकिन वंशिका की आंखें इस वक्त तो सिर्फ ध्रुव को ढूंढ रही थीं, और जैसे ही अरमान के पीछे उसकी निगाह ध्रुव पे पड़ी तो वैसे ही वंशिका अरमान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हालांकि उसने तो सोचा था कि अगर उसे कोई पकड़ भी ले तो वो इस तरह का रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त माहौल काफी डरावना हो गया था, क्योंकि जिस तरह से सब गुस्से भरी लाल आंखों से वंशिका को घूर रहे थे तो वंशिका को उनकी आंखों में उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। वंशिका को उनकी आंखों में सामने वाले को फाड़ खाने वाला गुस्सा दिखाई दे रहा था और सबके हाथों में गन थी, इसलिए वंशिका ने जल्दबाजी में जैसे तैसे अरमान से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा ध्रुव की ओर दौड़ लगा दी और उसने झट से ध्रुव को गले से लगा लिया। अब जैसे ही सब लड़कों ने आंखें तरेरते हुए ये नज़ारा देखा तो सब लोगों की आंखें हैरानी के मारे फटी के फटी रह गई थीं। वहीं आहान का माथा ठनका, उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखाई दी और वो अब खुद को रोक नहीं पाया और ध्रुव को देखकर दांत पीसते हुए चिल्लाया, तू दोस्त है कि दुश्मन? इसका मतलब साफ है कि तूने ही इस मुस्टंडे को हायर किया था, है ना, अपनी भाभियों और घर की औरतों पर हाथ साफ करने के लिए? आखिर तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आहान की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर ध्रुव को हैरानी नहीं हो रही थी। वो आहान के दिल का हाल अच्छी तरह से समझता था। ध्रुव उसके गंभीर चेहरे को अनदेखा करते हुए अपने गले से लगे हुए उस मुस्टंडे लड़के को घूर कर देख रहा था, तो कभी वो बारी बारी से सबको कन्फ्यूजन से नासमझी में देख रहा था, लेकिन अभी भी उसकी चिंता वंशिका के लिए खत्म नहीं हुई थी। इस वक्त सबकी निगाहें वंशिका पर टिकी हुई थीं और हर एक की नज़रों में उसे अपने लिए ढेर सारा गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं ध्रुव के गले से लगी हुई वंशिका को खुद के लिए इतना गुस्सा देखने की उम्मीद नहीं थी। वो बस डरी सहमी सी ध्रुव से चिपक कर खड़ी थी। ध्रुव अब झुंझलाकर गुस्से में वंशिका को खुद से दूर धकेलते हुए बोला, अरे कौन हो भाई तुम? क्यों आकर मेरे गले पड़ रहे हो? ये क्या बेहुदा हरकत है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लेडीज के साथ ऐसे खुलेआम छेड़खानी करने की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो, जवाब दो, ध्रुव ने उसे फटकारते हुए सवाल पूछा। ध्रुव की बात सुनते ही वंशिका की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो पूरी तरह सन रह गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने डबडबाई आंखों से एक नज़र अरमान को देखा, फिर बाकी सभी की ओर। सबकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी और फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। वंशिका को इस तरह से रोता हुआ देखकर आस्था, रश्मि, राधिका और एंजल अब खुद को रोक नहीं पाई। पहले तो कुछ देर तक उन्होंने वंशिका को सिंपथी जताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वंशिका ने उन लोगों की तरफ चुपके से आंख मारी तो वैसे ही आस्था, रश्मि और बाकी सबको एहसास हुआ कि वंशिका झूठ मूठ कर रो रही है, तो वे सब जोर जोर से हंस पड़ी। वो सब इतने ज्यादा जोर से हंसी कि कमरे की दीवारें तक उनकी आवाज़ से गूंज उठी थी। आवाज़ें इतनी तेज थीं कि किसी के कान में भी दर्द हो जाए। अब उनके लिए ये सिचुएशन इतनी ज्यादा फनी हो चुकी थी कि बाकी की लड़कियां भी खुद को रोक नहीं पाईं और फिर वहां ठहाकों की बरसात होने लगी। ये देखकर ध्रुव और बाकी लड़के हैरान थे। उन्होंने मन ही मन नाराज नजरों से उन्हें देखकर सोचा, अरे इन लड़कियों को आखिर हो क्या गया है, ये सब इतनी बेफिक्री से क्यों हंस रही हैं। अब दादाजी ने थोड़ा चौंकते हुए अपनी सख्त आवाज़ में पूछा, आस्था बिटिया, ये सब हो क्या रहा है? एक तो तुम सब बिना बताए गायब हो जाती हो और जब मिलती हो तो अरमान के कमरे में, वो भी ऐसी हालत में, ऊपर से किसी आवारा लड़के के साथ मिलकर तुम सबकी सब डांस कर रही हो। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? दादाजी की बात सुनते ही कमरे की हवा जैसे ठहर सी गई। आस्था की हंसी एकदम से थम गई और अब उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसे समझ में आ गया कि इस वक्त सिचुएशन गंभीर है और सब मर्द उन्हें लेकर वाकई में परेशान थे। वो धीमे कदमों से अरमान के पास चली आई और उसका हाथ थामा और दबी हुई आवाज में बोली, क्या आप लोग हमें ढूंढ रहे थे? लेकिन क्यों, हम सब तो यहीं पर थे, कहीं नहीं गए थे, तो फिर आपको क्यों लगा कि हम गायब हैं? अरमान आईब्रो से कोरते हुए उसकी आंखों में गौर से देख रहा था, जैसे कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हो। आस्था को उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
इसलिए डर के मारे उसने अरमान का हाथ छोड़ दिया और अविनाश की ओर घूम कर देखा। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अविनाश ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल कहा, गोरी, तुम सब कहीं नहीं मिली तो हम सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हमें लगा कि कोई अनहोनी हो गई है, इसलिए हम पूरे शहर भर में तुम सबको पूरे 3 घंटे तक ढूंढते फिर रहे थे। ये सुनकर वहां सभी लड़कियों के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वंशिका की भी झूठी रुलाई अब बंद हो गई थी, वो भी धीरे धीरे सभी की ओर आश्चर्य से देखने लगी। अगले ही पल रश्मि जल्दी से आगे आई और सबकी ओर अविश्वास से देखकर शांत स्वर में बोली, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हम सब तो सिर्फ रौनक की गोद भराई कर रहे थे, हमें लगा ये इसका बिल्कुल सही समय है गोद भराई का, और आप सब बहुत बिजी थे किडनैपर को ढूंढने में। मैंने खुद आकाश जी को फोन पर बात करते सुना था कि जिस काम से वो जा रहे हैं वो देर रात तक चलेगा, फिर जब काफी देर तक हमें कोई नहीं दिखा तो हमने सोचा कि हम आज ही फंक्शन कर सकते हैं। हमने फंक्शन हॉल में नहीं किया ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, और अरमान का कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए हम सब यहीं आ गए। जैसे ही रश्मि ने अपनी बात पूरी की वैसे ही सभी लड़के एक दूसरे का चेहरा अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें अब जाकर समझ आया कि रश्मि किस वक्त की बात कर रही थी, उसी समय की जब वे तहखाने में नौकरों की जाँच पड़ताल कर रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस घर में गद्दार कौन है। आहान ने ये सब सुनकर पहले तो गुस्से में अपने हाथ पर चपत दे मारी, लेकिन फिर एकदम हंसते हुए बोला, मेरे हवा हवाई का फंक्शन था और आप लोगों ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। हाँ रश्मि दीदी, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे आप लोगों को कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, मैं भी तो हवा हवाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अरे मैं इसके होने वाले बच्चे का बाप हूँ तो मेरा तो फर्ज बनता है ना इसके हर एक काम में शामिल होना। तभी वहां सबको नानी माँ की आवाज सुनाई दी, बिटवा तुम गलत समझ रहे हो, ये फंक्शन सिर्फ लड़कियों का होता है, इसमें लड़कों का कोई काम नहीं होता है। जैसे ही नानी माँ ने अपनी बूढ़ी आवाज में ये कहा, आहान और बाकी सबकी नजरें एकदम से नानी माँ पर जाकर टिकी। सबका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया और सब एकदम से ठिठक गए। आहान का दिमाग तो भक से उड़ गया और वो नानी माँ को देखकर जोरों से चिल्लाया, भूत भूत, ये लेडी कौन है और ये तो एकदम नानीमा का रूप लेकर यहाँ आई है और एकदम नानीमा जैसी बातें कर रही है। इतना कहकर आहान ने ना आव देखा ना ताव और जल्दी से जाकर ध्रुव के ऊपर चढ़ गया। वहीं ध्रुव का अब सांस लेना भारी हो गया था, ध्रुव की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी। वो आहान को अपने ऊपर से उतरने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा और जल्द ही उसे जबरदस्ती अपने ऊपर से नीचे उतारकर अगले ही पल उसने गहरी सांस भरते हुए उसकी तरफ देखा और एकदम से तंज कसा, अभी ये भूत तेरी जान लेने वाला है या नहीं, लेकिन तू आज मेरी जान लेकर जरूर रहेगा। एक तो मुझे मेरी बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तू है कि मेरा सांस लेना भारी कर रहा है। मैं वंशिका को लेकर वैसे ही इतना परेशान हूँ और तू मुझे और परेशान कर रहा है। वहां मौजूद सब लड़कियां आश्चर्य से ध्रुव की ओर देखने लगीं। तभी वंशिका का ध्यान खुद की ओर गया और उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया कि ये सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सब लड़कियां एक दूसरे की शक्ल नटखट अंदाज में देखने लगीं। तभी आस्था ने आंखों ही आंखों में वंशिका को कुछ इशारा कर दिया। वंशिका ने उसका इशारा समझते हुए और तुरंत ही ध्रुव की ओर देखकर एकदम से सख्त अंदाज में कहा, और आपको आपकी बीवी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसे पकड़ कर ले गया हूं और बहुत जल्द मैं वंशिका से शादी भी करूंगा, उसने डरावनी आवाज बनाकर ये कहा था। अब ध्रुव की आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गई थीं और ध्रुव ने बिना किसी वार्निंग के वंशिका का गला बेदर्दी से पकड़ लिया। आह, वंशिका चीखी और ध्रुव उसे धमकाते हुए होंठ भींच कर बोला, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? हाँ, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हाँ, कहाँ है मेरी बीवी वंशिका? बोल, जवाब दे मुझे, तूने जरूर मेरी बीवी के साथ कुछ किया है। अब वो गुस्से से आस्था और बाकी सब लड़कियों की ओर नाराज नजरों से देखने लगा और एकदम से उन सब पर भड़का। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान हमारे घर में कैसे घुस आया और आप लोगों ने बिना सोचे समझे इसे अरमान भाई के कमरे तक पहुंचा दिया, और अब ये मेरी वंशिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके साथ खुद अपने हाथों से निपट लूंगा। इस वक्त ध्रुव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब जैसे ही ध्रुव ने ये एक्ट किया, सब लोगों के होश एकदम से उड़ गए। अचानक से एक तरफ से रश्मि, राधिका और एंजल वंशिका की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की। घबराहट में किसी के मुंह से भी ये बात नहीं निकल पाई कि यही वंशिका है। हर कोई बस इतना ही कह रहा था, ओह नहीं ध्रुव, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ध्रुव प्लीज, ध्रुव प्लीज, ओ नो प्लीज। हर किसी के मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें निकल रही थीं, लेकिन कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि सामने खड़ा मुस्टंडा ही असल में वंशिका है। वंशिका भी धीरे धीरे झटपटा रही थी। ध्रुव की पकड़ अब वंशिका के गले पर और मजबूत हो चुकी थी। इसी घबराहट और जद्दोजहद में वंशिका के गले में बंधा हुआ बॉडी बिल्डर जैसा मस्क्यूलर ड्रेस, जिसमें उसने सिक्स पैक एब्स पहन रखे थे, ढीला पड़ गया और वो ध्रुव के हाथ पर गिर पड़ा। जैसे ही ये गिरा, ध्रुव को हल्का सा झटका सा लगा। उसके सामने वंशिका के असली खूबसूरत बाल लहराते हुए नजर आए। ध्रुव एकदम दंग रह गया और उसका दिमाग भक से उड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या होगा ध्रुव और वंशिका का, और आगे क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।